प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए नित्य के स्वाध्याय प्रवचन में प्रश्नोत्तरी रत्नमाला पर विचार चल रहा है। पहले उच्चारण, अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो मे शरणं किमस्ति, गुरो कृपालो कृपया वदैतद् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनौका, बद्धो हि को यो विषयानुरागी कावा विमुक्तिर्विषये विरक्ति, को वास्ति घोरो नरक स्वदेह तिष्णाच्छय स्वर्ग पदम किमस्ति, संसार हृतक श्रुतिजात्म बोध को मोक्ष हेतु कथित सैव, द्वारं किमेकं नरकस्य नारी का स्वर्गदा प्राणभृताम हिंसा, सेते सुखं कस्तु समाधिनिष्ठो जागर्ति को वा सदसद विवेकी, केशत्रव संति निजेन्द्रियाणि तान्येव मित्राणि जितानि यानि, को वा दरिद्रो हि विशाल तृष्णः श्रीमाश्च को यस्य समस्तितोषः, जीवन्मित कस्तु निरुद्यमोय किं वामृतं स्यात् सुखदा निराशा। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। तीसरे श्लोक पर विचार चल रहा, संसार हृतक श्रुतिजात्म बोध को मोक्ष हेतु कथित सैव, द्वारं किमेकं नरकस्य नारी का स्वर्गदा प्राणभृता महिंसा। संसार और संसार के मोक्ष का साधन बता रहे। यदि हम किसी चीज को ठीक से समझ लें तो उससे छुटकारा पाने का रास्ता अपने आप निकल आता है। ये जो संसार दुखात्मक है, संसार है क्या? जो हमारे जीवन में अनादिकाल से संसार के साधन में सुखेच्छा है, इसी का नाम है संसार, सुखेच्छा। कल आपने श्रवण किया न कि संसार रूपी वृक्ष का मूल है मन, यह बात मुक्ति को उपनिषद के अंत में बताई गई। तो जो हमारे मन में सुख की अभिलाषा बनी रहती है, सुख की चाहत, जब आप सुख को चाहेंगे तो बिना बिलाए दुख भी आ जाएगा। ये दोनों ऐसे द्वंद हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि सुख को तो पकड़ के रखें और दुख को दूर भगा दें। मोक्ष का मतलब होता है अशेष विशेष दुख का ध्वंस। देखो, मोक्ष का मतलब कि दुखों से छुटकारा पाना, सीधी बात। और संसार का अर्थ हुआ कि सुख की अभिलाषा, सुखेच्छा बोलती इसको, सुखेच्छा। तो हमारे मन में जो अनादिकाल से संसार के पदार्थों में, विषयों में, संसाधनों में, चाहे जड़ हो या चेतन, जड़ बोलते हैं जो रुपया पैसा सोना चांदी मकान दुकान, ये जड़ हो गया। जड़ में भी सुखेच्छा बनी रहती है कि बढ़िया सुंदर बंगला हो जाए, बहुत अच्छी जो है 10-20 करोड़ वाली अच्छी गाड़ी हो जाए। करोड़ तो कुछ भी नहीं, अब 10 करोड़ वाली गाड़ी आ गई है ना, ये जड़ है। ऐसे भूत भौतिक पदार्थों में जो सुखेच्छा, इसके बाद आप चेतन प्राणी, चेतन मतलब मनुष्य आदि प्राणियों में सुखेच्छा ढूंढते हैं, पर मनुष्यादि से सुखेच्छा हासिल नहीं हुई तो आप और आगे पहुंच जाते हैं। क्या बताओ, आप जानते हैं, गृहपाल में ढूंढते हैं। गृहपाल जानते ना, श्वान बिडाल को बोलते गृहपाल, घर की जो रक्षा करते कुत्ते, उसमें आप जो है ना सुख को ढूंढने लगते, आप दुख नहीं चाहते। ये हमारी भूल जन्म जन्म की है, ऐसा नहीं एक जन्म की है। तो सुख की आकांक्षा ही दुख को निमंत्रण देना है, सीधी बात। तो मन है, मन में सुख इच्छा होती है, पर मन सुख की इच्छा करने के बाद, जैसे आप सोचते हैं कि भाई फला जगह में जाना है, ऐसा इच्छण करने के बाद आप गाड़ी उठाते बैठकर चलते हैं, ऐसी मन में पहले सुख इच्छा हुई कि भाई फला वस्तु से बड़ा सुख मिलेगा। सुख इच्छा होने के बाद ये मन कभी आंख के ऊपर बैठ गया और आंख के द्वारा हम विषय देश में जाते, रूप को देखे, मन ने कहा बहुत अच्छा रूप है, बहुत पसंद है। ये जो आप इंटरनेट से पिक्चर देखते हैं या जो अन्यान्य जो पदार्थ है, ये क्या है? आंख का ही तो विषय। आप बार बार उन दृश्यों को जो नाम रूपात्मक है देखते रहते, कहते बहुत अच्छा जीवो गरीब। यह जो हमारी आंख है, वह आंख विषय देश में गई, विषय ले लो समझने के लिए ये पिक्चर, क्योंकि संसार का जो पदार्थ है उसको आप इतने समर्थ नहीं, सक्षम नहीं कि जल्दी जल्दी घूमकर देख सके। और नारद जी महाराज तो अनुभव कर लिए, वो कथा ना नारद जी की। नारद जी को बड़ा कुतूहल हुआ कि भाई एक पत्नी से पार पाना तो बहुत कठिन है ना, और जो है कितनी पत्नियां थी मालूम है ना आपको? 16108। इतनी उनके साथ श्री कृष्ण कैसे बर्ताव करते होंगे, कैसे उनको संतुष्ट रखते होंगे, ये तो असंभव है। तो नारद जी के पास अलौकिक शक्ति थी, जिसको बोलते योगज शक्ति। जैसे नारद जी एक घर में गए, भगवान बड़ा स्वागत किया, आओ आओ पधारो, क्या हालचाल है? बोले बस महाराज दो मिनट में आ रहा हूं। दूसरे घर में गए तो क्या देख रहे हैं? वहां भगवान वेद पाठ कर रहे, तुरंत खड़े हो गए, आओ महाराज पधारो। बोले अभी अभी आ रहा हूं, दो मिनट। दस बीस घर में गए तो सोचे कि हमसे तेज जाता है, अब हवा की गति से दौड़ने लगे। जहां नारद जी जाए उसके पहले भगवान मौजूद, कोई यज्ञ कर रहे, कोई उपदेश कर रहे, कि बच्चों को खिला रहे हैं, कि लाड प्यार दुलार भी कर रहे हैं, कहीं आत्म विचार कर रहे हैं, कहीं जो है ना मित्रों के साथ परामर्श कर रहे। तब नारद जी को अनुभव हो गया, जो चैतन्य है वह पहले से मौजूद है। इसी को बोलते हैं प्रतिबोध विदितम मतम आत्म तत्व विन्दते विद्या विन्दते वीर्यम आत्मना विन्दते अमृतम। ये कहां का मंत्र है भाई? खूब सुनते स्वाध्याय प्रवचन, ये साम वेदीय केनोपनिषद का, साम वेद के अंदर केनोपनिषद है। प्रतिबोध विहितम मतम, प्रत्येक बौद्धिक वृत्तियों के पहले वह मौजूद है, अनुस्यूत है। तो नारद जी के समान तो हम विषयों का साक्षात्कार कर नहीं सकते। तो जो है ना कलयुगी वैज्ञानिकों ने आपके लिए इंटरनेट खोल दिया, मोबाइल स्मार्टफोन कर दिया, या आप चिंता नहीं करो, घर में बैठे बैठे बंद कमरे में दुनिया के सारे तमाशे को देख सकते। ये कम संसार नहीं, बहुत बड़ा संसार है। तो जो हमारे मन में सुख इच्छा हुई, सबसे पहले क्या हुई? सुखेच्छा। सुखेच्छा होने के बाद हम नारद महर्षि के समान दौड़ दौड़ कर तो संसार के विषयों को देख नहीं सकते, कौन क्या कर रहा, कैसा कर रहा। चलो नारद जी की तो कम से कम भगवत विषयिणी थी ना, कि भगवान की दिनचर्या विषय, पर हमारी भगवत विषय नहीं, दुनिया के विषय में कि फला क्या कर रहा है। तो हमारा मन पहले सुख का इच्छण करता है, इसके बाद आप इंद्रियों की सहायता से सुख को हासिल करना चाहते, तो वह सुविधा आज आपके हाथ में मोबाइल में आ गया। आप जो देखते वह सिर्फ हमारे एक आंख का विषय, उससे थक गए तो हमारी जो कान है वो क्या कहते, भाई बहुत मीठी मीठी अच्छी चीजें सुनने को मिलनी चाहिए, आप गाना संगीत में उलझ गए। उससे जो सुख हासिल नहीं हुआ तो आप कहते भाई भोजन खिलाओ। जीव महारानी इसी मन को खुश करने के लिए पेट का ध्यान ही रखता। पेट का ध्यान हो तो कोई बीमारी होगी नहीं। हम अपने मन रूपी मंत्री को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए अब क्या करते, स्वादिष्ट व्यंजन का उपभोग करते और भोगे रोग भयम, अनेक प्रकार के रोगाक्रांत हो जाते। तो सबसे पहले मन में सुखेच्छा हुई, सुखेच्छा के बाद मंदिराम इन इंद्रियों पर सवार होकर विषयों में सुख को ढूंढता है, ढूंढता है सुख पर हासिल क्या होता, दुख। बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप बताओ मित्र क्यों नहीं बनाते। ये बहुत ही हमारे जीवन को प्रभावित की बात, इसको हमने पूरा उतारा अपने जीवन में। ये बुद्ध की बात, सीधा उत्तर दिया, हमको शत्रु नहीं चाहिए, सीधा उत्तर दिया बुद्ध ने। कहा उनके थे प्रिय शिष्य आनंद, बोले देखो आनंद हमें शत्रु नहीं चाहिए इसलिए मित्र नहीं बनाता हूं। जब मित्र बनाएंगे तो पक्का है शत्रुता वहीं से कभी न कभी खटपट होगा, प्रतिकूलता होगी, शत्रुता हो जाएगी। क्योंकि मित्रता होने के बाद आप सबके इच्छा को परिपूर्ण नहीं कर सकते, आप सबको खुश नहीं कर सकते। जिसको आप अपने व्यवहार से खुश नहीं कर पाएंगे वह शत्रु हो जाएगा। ऐसे ही जब आप सुख की इच्छा करेंगे तो अपने आप बिना बुलाए दुख भी आ जाएगा, इसी का नाम संसार। अब संसार के मोक्ष का उपाय क्या बताया, श्रुतिजात्म बोध। आप लोग बहुत बड़े ज्ञानी हैं, डॉक्टर मास्टर की क्या क्या उपाधियां सोच नहीं सकते हम, पीएचडी डीलेट क्या क्या वो एक एक उपाधि हो गई ना, बीटेक सीटेक एमटेक और भी कई उपाधियां। यह तो ज्ञान है, यह श्रुति जात्म बोध नहीं है। यह कौन सा बोध है मालूम है, इसको बोलते हैं मायात्मक बोध, सांसारिक बोध। ये जो बोध है मायाजन्य बोध है, मायाकृत बोध है। यह जो भूत भौतिक बोध है इस बोध से कभी भी शांति नहीं मिलती। घटा लो तर्क की कसौटी, बस लो आपको जो है ना किसी ने बता दिया या आपने टेलीविजन में देखा इंटरनेट से कि फला चीज इतनी अच्छी है, एक बार उसको खा लिया जाए तो सारी बीमारियां दूर हो जाती, यहां तक कि बुढ़ापा भी नहीं आती है। आपने श्रवण किया, इसके बाद आप पता लगाने लगे भाई वो चीज वो फल कहां मिलेगा। किसी ने कहा फला जगह कितने रुपए में वह मिलता है, अब आप सुनने के बाद बेचैन, सिर्फ आपने आंख से टेलीविजन में देखा या कान से सुना, तो वह जो भूत भौतिक पदार्थ का ज्ञान है वह सुनने के बाद आपके अंतःकरण में हुआ। ज्ञान का आश्रय होता है अंतःकरण और ज्ञान का विषय होता है पदार्थ। तो अंतःकरण में ज्ञान हुआ कि फला चीज को खाने के बाद सारी बीमारियां मिट जाएंगी, निरोग हो जाएंगे, बुढ़ापा से छुटकारा, आनंद ही आनंद। यह जो ज्ञान है आपके अंतःकरण में भीतर हुआ, शरीर के भीतर हुआ, और विषय कहां है, बाहर। तो ज्ञान का स्वभाव है कि गेय से तादात्म्य स्थापित करना। तो जब तक बाहर का जो पदार्थ है फल आपके पास नहीं आ जाता या कोई लाकर आपको सामने उपलब्ध कराए या आप वहां चलकर जाओ, दो ही उपाय हैं, तब तक मन में शांति नहीं मिलती है, आप बेचैन रहते हैं। जैसे मछली जल के बिना बेचैन रहती, छटपटाती है, तड़पती रहती, ऐसे ज्ञान का स्वभाव है कि गेय से तादात्म्य करना। पर ज्ञान है आपके अंदर अंतःकरण में और गेय है विषय। तो जितनी अधिक भूत भौतिक पदार्थों की जानकारियां हासिल होगी उतनी ही बेचैनी बढ़ती है। इसलिए बढ़ती कि आप उस ज्ञान का गेय के साथ तादात्म्य स्थापित करना चाहते, परंतु आत्मज्ञान इसके विपरीत है। आत्मज्ञान में ज्ञान गेय और वह जो आपका अंतःकरण में जो चित ज्योति तीनों एक ही है, वहां त्रिपुटी नहीं, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इसलिए यहां पर किसी की अपेक्षा नहीं होती है। तो श्रुति का जो बोध है वह बोध क्या है कि भाई आत्मा व अरिद्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य आत्मा व अरिदर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञातम भवति। आत्मा का श्रवण करना चाहिए, सुननी ही है तो क्या सुननी चाहिए, आत्म विषयक कथा। दूसरे के घर की कचरे की कहानी सुनने से आपका घर साफ नहीं होगा। जब हम पराए घर की कहानी सुनते तो कान क्या बोलती, बहुत अच्छी, बताओ वो बहू ने क्या किया, फिर सास ने क्या कहा, फिर नौकर ने क्या किया, अच्छी लगती ना। अब बताओ पराए घर की कहानी सुनने से आपको क्या मिलना, कुछ नहीं। जब अपने घर की कहानी सुनेंगे भी हमारे घर में कहां कचड़ा है तो निकाल फेंकेंगे। तो श्रुति आपको अपने स्वरूप विषयक कथा बता दी है। तो सुननी तो अच्छी बात है, पर कैसे सुने, श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यो। तो श्रवण से आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा वरे श्रोतव्य। पर यहां पर कहा आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, सबसे पहले दर्शन कहा, द्रष्टव्य मंतव्य श्रोतव्य, ऐसा श्रुति में पाठ है। इस श्रुति को लगाने के लिए पाठक क्रमात् अर्थक क्रमो बलिय, मीमांसा का सिद्धांत है। जो पाठक क्रम है उससे अर्थक क्रम बलवान होता है। जैसे कि लिखा है कि यवागु जुहोति, फिराता यवागु पचति। जब हवन कर लेगा तो यवागु बनाने की जरूरत, यवागु बोलते लपसी को जो आप बनाते ना, वो मीठा मीठा जो दलिया का लपसी, उसको, हाँ इसको यवागु बोलते संस्कृत में। तो लिखा कि यवागु जुहोति, फिर बोला यवागु पचति। जब आपने हवन कर लिया तो पकाना व्यर्थ। तो अर्थक्रम से यवागु पचती को पहले लाएंगे कि यवागु को पहले पकाएगा, तैयार करेगा, बाद में हवन करेगा। ऐसे ही भले श्रुति में लिखा है कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य पिका श्रोतव्य, तो आप पहले श्रवण करेंगे तब जाके दर्शन होगा, पहले श्रवण। तो श्रवण करना यह है तो श्रुति वाक्यों के आधार पर श्रवण करें, क्योंकि भगवान ने गीता में अर्जुन को फटकारा कि तू बहुत श्रवण किया है ना, उससे जो आत्म भ्रांति है वह दूर हो जाएगी, तब जाके बुद्धि एकाग्र होगी। गीता में बात, श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, आगे क्या तदा बुद्धो समाधो स्थास्यति निश्चला। इसका मतलब कि अर्जुन के जमाने में भी ऐसी बातें थी, इसलिए हम लोगों को हैरान होने की जरूरत नहीं। मतलब भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त अर्जुन पर अर्जुन को भी कई तरह की बातें सुनने को मिली होगी, जैसे आप सुनते हैं ना कि भाई सबसे बड़े देवता कौन है, तो किसी ने कह दिया बस कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। किसी ने कह दिया अरे अरे वो तो ग्वाल बाल था, सबसे बड़े देवता भगवान राम। अब संशय हो गया किसकी उपासना करे, तो किसी ने कहा अरे भाई देवताओं के देव महादेव, तो बुद्धि क्या हो गई महादेव की तरफ। किसी ने कहा अरे सबसे बड़ी देवी त्रिपुरा सुंदरी, इन तीनों के पहले उत्पन्न हुई तो देवी में, तो संशय हो जाता है कि भाई कौन सी उपासना करे। मैं प्रारंभ में साधु बना तो पूछता था बताओ सबसे बड़े देवता कौन, तो वैष्णव संत थे और जब सबसे पहले टकराए बोले सबसे बड़े देवता भगवान विष्णु नारायण, तो लग गया उनकी उपासना में। जब हरिद्वार पहुंचा तो लोगों ने कहा अरे देवों के देव महादेव हैं, तो अपने आप पता नहीं कब कैसे सारी उपासना छूट गई, महादेव की भक्ति करने लगा। तो प्रारंभ में सबको ऐसा होता है, सबको कुतूहल होता है कि सबसे बड़े भगवान कौन, उनकी उपासना करनी चाहिए। तो यहां पर भी अर्जुन को बहुत संशय हो गया, तो भगवान ने फटकारा श्रुति विप्रतिपन्ना थे, जो अनेक प्रकार की बातों को सुनने से बुद्धि में विप्रतिपत्ति हो गई कि क्या करे क्या न करे, कौन उपासना करे कौन उपासना न करे। तब भगवान ने कहा अब निश्चल बुद्धि हो जाएगी, तब जाकर तुम्हारी बुद्धि समाधि मतलब अंतःकरण में स्थित हो जाएगी। समाधि का दोनों अर्थ, अंतःकरण भी अधिष्ठान चैतन्य भी। व्युत्पत्ति वैचित्र्यात् अर्थ वैचित्र्यम होता है। तो देखो श्रवण करना कैसे, श्रुति के द्वारा। यदि आप श्रुति के द्वारा सुनेंगे तो आप भटकेंगे नहीं। देखो आज का हजारों नहीं लाखों करोड़ों इंसान क्यों भटकते हैं कि आप श्रुति के आधार पर नहीं सुनते हैं। ये परंपरा की कहावत है कि सर्वशास्त्र विदपि असंप्रदायवित मूर्खवत उपेक्षणीय। सारे शास्त्रों का बड़ा भारी विद्वान है परंतु असंप्रदायवित है, बाजारों पुस्तकों को खरीदकर पढ़ा या नेटवर्क से पढ़ा तो वो समझो मूर्ख के समान उपेक्षा कर देनी चाहिए, क्योंकि अर्थ का अनर्थ कर सकता, अर्थ का अनर्थ हो सकता, इसीलिए कहा संप्रदाय पुरस्सर होना चाहिए। तो आज हम श्रुति को पीछे छोड़कर ये मनमाने बाजारों के पुस्तकों को पढ़ते हैं, चिंतन करते तो हम भटक जाते हैं कि भाई यह सत्य कि वह सत्य। हमको कई ऐसे साधक मिले अच्छे महात्मा गृहस्थ आश्रम के भी, जिन्होंने कहा महाराज फला पुस्तक पढ़ी सत्यार्थ प्रकाश और फला फला तो बुद्धि भ्रमित हो गई, सब उपासना छूट गया। तो आचार्य शंकर कहते भाई सुनना है पढ़ना है गुनना है, तो मनमाना बाजारों पुस्तक नहीं बल्कि श्रुति जन्य जो शास्त्र है जो प्रमाणिक शास्त्र है उनका श्रवण करना चाहिए। उनका श्रवण करेंगे तो संसार से छुटकारा पाने का रास्ता मिलेगा। तो श्रुति का बोध क्या है, जीव ब्रह्मैव नापरः। भगवान शंकराचार्य ने बताया श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, जो करोड़ों ग्रंथों में बताया है उसी बात को आधे श्लोक से बताऊंगा। ये बंबई वालों के लिए बढ़िया चीज है क्योंकि बंबई वालों के पास इतना समय नहीं कि इतने शास्त्रों को पढ़ें। तो कहा भाई कोई बात नहीं, तुम बंबई वालों को बढ़िया रास्ता बता रहा हूं, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, जो करोड़ों ग्रंथों से बताया उसको आधे श्लोक से बताऊंगा। आचार्य ने कहा वो आधा श्लोक सबको कंठ है। हाँ क्या है भूल रहा, हाँ ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, जीवो ब्रह्मैव नापरः। अब आप जीव कार्य कर लो अंत कणाव छिन्न चेतन तो गड़बड़ हो जाएगा। जीव कार्य कुटस्थ, कुटस्थ ब्रह्म की एकता होती है, जीव की एकता संभव नहीं, क्योंकि उपाधि जीव के साथ लगी हुई। तो देखो श्रुति तो कहती है कि सत्यम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है। यदि आपको ठीक से जानकारी हो जाए कि सामने चमकने वाली चीज चांदी नहीं है तो दौड़ेंगे उधर, बताओ ईमानदारी से। ठीक से ज्ञान हो जाए कि जो सामने चमक रही चीज ये चांदी नहीं, तो आप अपने सर को माथा पर रखेंगे, अरे मैं इतने दिन तक एतावंतम कालम भ्रांतम, ऐसा अनुभव होता, इतने काल तक मैं भ्रमित था, इसको चांदी समझ रहा था, दौड़ रहा था। जब आप दौड़कर पास में जाते हैं तो अनुभव क्या होता है, एतावंतम कालम भ्रांतम, इतने काल तक मैं भ्रांत था, ये चमकने चमकने वाली चीज चांदी नहीं है तो सीपी है। आप दौड़ना बंद कर देते, दूसरों को सिखाते, भाई ये चमकने वाली चीज चांदी नहीं है तो सीपी है, ये तो रांगा है। ऐसे यदि आपको ठीक से सत्य का बोध हो जाए कि संसार सत्य नहीं, संसार क्या है, काल्पनिक, पर अज्ञान अवस्था में उल्टा होता है। श्रुति जन्य बोध न हो तो आप संसार को सत्य मानकर दिन रात दौड़ रहे, पैसे दौड़ रहे, आंख से दौड़ रहे, आंख से वो इंटरनेट में दौड़ते हैं, है ना, जो आता है सब जितने भी चैनलों में, और कान से शब्दों के पीछे भाग रहे, पैर से इधर उधर जा रहे, आत्मा कणकण में मौजूद, पर मन क्या कहता है, भाई यहां का माहौल ठीक नहीं, चलो हरिद्वार जी, चलो हिमालय, वहां बहुत शांत एकांत होगा, वहां ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। जब वहां दौड़कर गए, जब ठंडी ठंडी हवा लगी, जरा बुखार आ गया तो बंबई याद आ जाती, अरे बंबई बढ़िया था, वहां तो कम से कम ठंडी नहीं। या तो दिन रात शरीर को संभालने में लगे रहते हैं, ये पैर का स्वभाव कि जहां पर आप है वहां पर सत्य का अन्वेषण नहीं करता, तो अज्ञान से आप संसार को सत्य मानकर इसको प्राप्त करने के लिए पीछे पीछे भागते हैं, इसको बोलते हैं अप्राप्त की प्राप्ति, अप्राप्त की उपेक्षा, इसको संक्षेप में कहते हैं अप्राप्तस्य प्राप्ति, प्राप्तस्य उपेक्षा, ये भूल हमारी। संसार अप्राप्त है, कभी प्राप्त हो नहीं सकता, पक्की बात है, पर अज्ञान से, दुनियादारी की शिक्षा से, व्यवस्था से, ज्ञान से हम क्या करते हैं, संसार को सत्य मानकर अप्राप्त को प्राप्त करने में लगे रहते हैं, यही अज्ञान है। जब श्रुति से आत्मज्ञान होगा तो आप अप्राप्त को पाने के लिए दौड़ेंगे नहीं, और प्राप्त आत्मा की उपेक्षा नहीं करेंगे, आत्मा नित्य प्राप्त है, तो नित्य प्राप्त की उपेक्षा नहीं होगी। तो कहते हैं आचार्य शंकर कि भाई श्रुति के द्वारा जो बोध है उससे ही मोक्ष होता है, वही मोक्ष का हेतु है। तो आप इतना तो कर सकते कम से कम कि भाई सुख की इच्छा नहीं करना बस, क्योंकि जैसे सुख को पकड़ने जाते वैसे सुख के पीछे छुपा हुआ दुख हाथ लग जाता। तो आप सुख को छोड़ेंगे तो अपने आप दुख दूर हो जाएगा। यदि आप मित्र नहीं बनाएंगे तो सीधी बात, शत्रु कोई बनेगा ही नहीं, मित्र बनाना ही शत्रु को निमंत्रण देना है। द्वारम किमेकम नरकस्य नारी का स्वर्गदा प्राण भिता महिंसा। भगवान शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं, इस पर बहुत लोग शंका करते ना। द्वारम किमेकम नरकस नारी, शास्त्र बोलते हैं अज्ञात ज्ञापकम ही नाम शास्त्रम, ये बात याद कर लेना, बार बार आती है, अज्ञात ज्ञापकम ही नाम शास्त्रार्थ। अज्ञात मतलब जिस चीज को नहीं जानते हैं उस चीज को बताना ही शास्त्र का काम होता है। जिस चीज को आप जानते हैं संसार के पदार्थों को, उसको बताना शास्त्र का शास्त्रार्थत्व नहीं होता है। तो अज्ञात ज्ञापक नाम है शास्त्र का। यहां पूछा कि भाई नरक का द्वार क्या है, नरक शब्द का अर्थ होता है नरकस्य कम नरकम, नर शब्द नर अलग कर दो, नरधन कम, कम अर्थ है सुखम, नरस्य कम नरकम। नर मतलब मनुष्य जाति, नर मतलब मनुष्य जाति, मनुष्य में सभी आ जाएंगे, बालक भी वृद्ध भी स्त्री भी पुरुष भी सभी आ जाएंगे। तो नरस्य कम मतलब नर का जो कम सुख क्या है कि जैसे आप नरक मतलब सुख की इच्छा करते वैसे ही दुख सामने खड़ा हो जाता। भगवान इसका अच्छा उत्तर दिया, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत् त्रयम् तेत। इसके अनुसार इस श्लोक की संगति अच्छी तरह बैठ जाती है। और नारी शब्द का स्त्री नहीं, यहां पर स्त्री नहीं लेना, यहां पर नारी का देखो वैसा न है अरि है, ठीक है ना, न धन अरि, अरि बोले शत्रु को, अरि शत्रु न विद्यते यस्मिन अस्यवा इति नारी। जो नारी में दीर्घ है ना वो इन परते होकर श्रवण दीर्घ कर देना व्याकरण से तो नारी बन जाएगा। तो नारी का अर्थ हुआ इच्छा, नारी मतलब इच्छा, चाहे मोक्ष की इच्छा हो चाहे भोग की इच्छा हो चाहे लोक की इच्छा, इच्छा सबको प्यारी होती है, इच्छाएं बड़ा सुख बुद्धि होती है। तो शास्त्र का मतलब अज्ञात ज्ञापक, शास्त्र लाक्षणिक होता है। या नारी का स्त्री अर्थ नहीं करना तो खटपट हो जाएगा, यदि आप स्त्री को गाली देंगे ना तो उनका नंबर आएगा, बोलेंगे ये पुरुष नरक के द्वार है। तो ऐसा नहीं, एक आदमी ने शेर को फोटो दिखाया, देख तो अपने को बड़ा पराक्रमी कहता है, मैं तेरे ऊपर बैठकर फोटो खिंचाया हूं। शेर ने देखा, हां बात तो भाई सही, तो हमारे ऊपर बैठकर और डंडा लेके फोटो खिंचाया। आदमी ने कहा तू बोल कुछ बोलना है तो, शेर ने कहा देखो मुझे फोटो खिंचना होगा ना तो तेरे गर्दन को गले में दबा कर खिंचाऊंगा। तो बात तो सही है भाई, शेर को फोटो खिंचाना होगा तो आदमी के गले को गर्दन में मुख में दबा कर खिंचाएगा। ऐसे यहां पर नारी का इच्छा करना स्त्री नहीं करना तो घटेगा भी नहीं ना, क्योंकि जो नारी है वो नारी सब की स्त्री अर्थ करो तो अव्यवस्था हो जाएगी। वेद में सर्वत्र वर्णन किया, यत्र नार्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में जिस परिवार में जिस समाज में नारी का पूजन होता वहां देवताओं का निवास होता, और जहां पर नारी का अपमान होता वहां पर शैतान का निवास होता। तो यहां पर नरक का द्वार नारी नहीं, क्योंकि देखो सरस्वती भी नारी, सावित्री गायत्री सब तो नारी है ना। तो नारी का करना की इच्छा, जैसा भगवान ने गीता में कह दिया त्रिविधम नरकस्येदम, नरक का द्वार तीन है काम क्रोध लोभ, तीनों को आप एक में समावेश कर सकते हैं इच्छा में। कैसे, जब हमारे इच्छा का विघात होता है तो क्रोध होता है, जब आपकी कामना पर बाधा पड़ जाए तो क्रोध से तम तमा जाते हैं, और जब आपकी इच्छा पूर्ण हो गई तो लोभ खड़ा हो जाता है और होना चाहिए। उत्तर काशी में चार पांच महात्मा थे, ये बात परम पूज्य स्वामी रामानंद जी महाराज सुनाया करते, ये बहुत अच्छी बात। तो उसमें से तीन अच्छे महापुरुष थे। एक महात्मा का स्वभाव, जब कोई भगत लड्डू पेड़ा मिठाई लेकर जाए तो बोलते ब्रह्मचारी इसको गंगा जी में समर्पित कर दो, पूरा पॉकेट मिठा गंगा जी में डाल दिया, मतलब गंगा ये स्वाहा। दूसरे महापुरुष का स्वभाव था कि सबको प्रसाद रूप से बांट कर देना। तीसरे महात्मा का स्वभाव था, क्या स्वभाव था, कि उसको पंगत में जितने आए उनको ही बांटना, पंगत से बाहर नहीं। अब बता तीनों में से किसका बढ़िया स्वभाव, सोच के बोलना। पहला जो गंगा यही स्वाहा की वो बढ़िया, जो बांट कर खायो बढ़िया, बांट कर गिरीश भाई नहीं बोल रहे, हमसे पूछो तो पहला वाला ठीक है। जो क्यों बता रहा हूं, यदि आपने गंगा ही स्वाहा कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आप जिस दिन मिठाई नहीं बांटेंगे उस दिन आपको भी तकलीफ, अरे मिठाइयां नहीं बांटा, लोगों को मुंह मीठा नहीं किया, और उसको भी जो खाने वाला गुरु जी ने आज जो है ना मिठाई नहीं दिया, क्या बात है, क्या चक्कर हो गया, अरे मिठाई आई नहीं तो कहां से देंगे, सीधी बात है। अच्छा पहला वाला गंगा जी को दे दो, गंगा जी बोले कि भाई मिठाई तुमने क्यों नहीं दिया, मिठाई कैसा था कैसा नहीं था, कुछ नहीं बोलने वाली। तो गंगा जी में समर्पित कर दिया आपने तो कोई वृत्ति नहीं बनेगी, वृत्ति शांत, देने वाले की लेने वाले दोनों की। यदि आपने मिठाई बांटना शुरू कर दिया तो जिस दिन मिठाई नहीं बांटी उस दिन आपके मन में वृत्ति बनेगी, अरे हमने नहीं बांटा, और लेने वाले के मन में तो खटपट हुआ ना, हलचल शुरू हो जाएगा। तो पहले वृत्ति बढ़िया है। वैसे यहां पर जो इच्छा है, इच्छा पर बाधा पड़ने पर क्रोध, अपूरा होने पर लोभ है। इसलिए भगवान ने कहा त्रिविदम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनम, इन तीनों को छोड़ना। तो तीनों का मूल है काम, इच्छा, या नारी कार्य करना इच्छा, पंक्ति बैठ गई ना, द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, मतलब नरस्य कम, नर का जो कम सुख है वो इच्छा में होता है। किसी चीज की इच्छा में इतना मजा आता, उतना मजा उसको पाने के बाद नहीं होता है। संस्कृत का नियम है विपत्ति वैचित्र्यात अर्थ वैचित्र्यम, एक ही शब्द है, आप जैसी विपत्ति करते वैसा विलक्षण अर्थ निकलता है। तो बढ़िया विपत्ति करें, व्याख्या करें तो अच्छा अर्थ निकलता। एक बात सुनाया करता हूं कि एक महात्मा जी कथा कर रहे थे, एक बुढ़िया माई आई, आते ही माता जी ने कहा पापी जी महाराज ओम नमो नारायणाय, सब सन्न रह गए, हाँ पापी जी महाराज ओम नमो नारायणाय, सब बोली बुढ़िया माई से कैसे बोल रही। बाबा जी ने कहा कि धन्यवाद आर कुतरिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच बोलते ना आप, बैठ जाओ, बैठ गई, प्रवचन प्रारंभ हो गया। आगे फिर प्रवचन समाप्त होने के बाद आगे की कथा लोग सुने नहीं, बस संसिप लोगों ने माई कैसे ऐसे बोल दी, भाई सबके बीच में कैसे बोल दी, जरूर दाल में कोई न कुछ काला होगा। एक वृद्ध व्यक्ति को लोगों ने कहा भाई आप बहुत पुराने, बहुत करीब हो बाबा जी के, जरा पूछो उसने पापी क्यों कहा। उस आदमी ने कहा मैं नहीं पूछता, तुम पूछो, तुमको जिज्ञासा। सब इकट्ठे होकर बाबा जी के पास बोले महाराज बड़ी सभा में उस बुढ़िया मां ने आपको पापी क्यों कहा। बाबा जी ने कहा भाई उसी मां से पूछ लो क्यों पापी कहा। मां के पास गए, उस बुढ़िया मां ने कहा कि बताओ बेटा तुमने कुछ सत्संग सुना कि नहीं। बोला कि सत्संग तो मैं सुनते सुनते जवानी से बूढ़ा हो गया। बोला अच्छी बात, तब समझ में बात आ जाएगी। फिर उस बुढ़िया मां ने पूछा कौमुदी पढ़ी कि नहीं। बोला सो तो नहीं पढ़ा भाई, कोई बात नहीं, मैं समझाने का प्रयास करूंगी। उस बुढ़िया मां ने कहा पापाने पारक्षणे दो धातुए हैं, पापाने से बनता है दुग्धम पिबती तक्रम पिबती, और पारक्षणे से बनता है पाती विश्वम पाती विश्वंभरो, पासे पाती बनता रक्षा करना, और पासे पिबती बनता है। तो पापी शब्द इन दो धातुओं से बना, जिसका अर्थ हुआ इस महापुरुष ने शास्त्र ज्ञान का पान कर लिया। कैसे? कर्णपूट के द्वारा, और पाकर संसार सागर से अपनी रक्षा कर लिया। इसलिए हमने बाबा जी को पापी जी ओम नमो नारायणाय कहा। कितना बढ़िया अर्थ निकल गया। पापी मतलब आत्मज्ञानी, जिसने शास्त्रों को सुनकर हजम कर लिया, उसका नाम हो गया पापी। सब तो वही है, पर किसी को पापी बोल कर देखना महाभारत हो जाएगा। पर समझदार होगा तो अच्छा अर्थ निकाल लेगा। इसके बाद पूछा कि महाराज एक कुतरिया क्यों? मां ने कहा उससे पूछ लो भाई, बाबा इसे पूछ लो। बाबा जी के पास आए, महाराज आपने कुतरिया फिर क्यों कहा? बाबा जी ने कहा देखो शास्त्र में आता है कुलम पवित्रम जननी कीर्तार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन अपार सचित सुख सागरेस्मिन लीनम परे ब्रह्मण यस्त चेतः। कुतरिया में कू है, तरिया दो शब्द है। कू का अर्थ है कुलम, एक पुस्तक है एकाक्षर व्याकरण कोश, उसमें प्रत्येक शब्द के अर्थ लिखे हुए हैं। कुकारते कुलम एकाक्षर व्याकरण कोश, राजस्थान से प्रकाशित है, जयपुर से। तो कु मतलब कुलम पवित्रम, और तरिया कारते तारना। इस बुढ़िया माँ ने अपने बच्चों को नाती पोतों को ऐसा आत्मज्ञान को उपदेश दिया, किसने कुल को तार दिया। इसलिए हमने कह दिया कुतरिया, समझे कि नहीं? कुतरिया दोनों अर्थ हुआ, कुतरिया का अर्थ होता है कुत्ती भी, कुतरिया का अर्थ हुआ कुल को पार भी कर दिया। सब बड़े खुश हो गए। तो जीवन में उस चैतन्य में आपकी बुद्धि लीन हो जाए, लिखा ना सच्चित सुख सागरेस्मिन लीनम परे ब्रह्म यस्य चेतः। जो आनंद का सागर है उसमें चित्त लीन हो गया, इसलिए इसको हमने कुतरिया कहा। तो शब्द वही है कुतरिया पापी, वित्पत्ति से अच्छा अर्थ निकल गया। ऐसे ही साधक को व्यवहारिक जीवन में चाहे कैसे भी शब्द हो, यदि आप उन शब्दों की अच्छी परिभाषा वित्पत्ति व्याख्या करें तो शब्दों से आपको आनंदानुभूति होगी। तो नरकस नारी का अर्थ हुआ कि नर का जो सुख वह नारी मतलब इच्छा, काश्वर गदा प्राण भिता महिंसा, ये तो आपको हमने शास्त्रीय अर्थ बताया, इसको बोलते लाक्षणिक अर्थ। परंतु जैसा लिखा वैसा अर्थ समझे तो भी क्षति नहीं। नरक का द्वार नारी स्त्री है, जैसा सूतार्थ है वैसा अर्थ में भी क्षति नहीं, क्योंकि शास्त्र का नियम है नहि निंद्याम निंदितुम अपितु विधेय स्तुत्यर्थम। निंदा निंदा करने के लिए नहीं होती है, निंद्य पदार्थ की निंदा के लिए निंदा नहीं की जाती है। नहि निंद्यम निंदितुम निंदा प्रवर्तते अपितु विधेय स्तुत्यर्थम। हम किसी की निंदा करते हैं तो निंदा करने में तात्पर्य नहीं होता है, बल्कि वहां से हटाने में तात्पर्य होता है। जैसे हमने कहा कि संसार बेकार है, इसमें कुछ सार नहीं है, इसका मतलब कि अपने मन को वहां से हटाना। ऐसे हमारा मन नारी के मतलब कामना से विशिष्ट पिंड में सुख को ढूंढता है और स्त्री पुरुष के शरीर में सुख को ढूंढती है, तो वहां से मन को हटाने के लिए वैराग्य भाव उत्पन्न कराने के लिए यहां पर निंदा की गई है। तो यहां तात्पर्य आपके विवेक जगाने में है, वैराग्य को पैदा कराने में है, न कि नारी की निंदा में है, ये भी अर्थ ले सकते हैं। द्वारम किमेकम नरकस्य नारी का स्वर्गदा प्राण भृता महिंसा। स्वर्ग को देने वाला जो है ना चीज क्या है, तो बताया अहिंसा। अहिंसा से जीते जी आपको स्वर्ग मिल जाता है। अहिंसा मतलब किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना, चाहे कायिक हो, वाचिक हो, मानसिक हो, तीन प्रकार से हिंसा होती। कई बार आप बैठे बैठे मन से प्रार्थना कर दे, हे भगवान इसका सत्यानाश हो जाए, ये भी नहीं करना मन से। अब वाणी से भी कड़वा नहीं बोलना। हम क्या करते हैं कि भाई बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, सत्यम ब्रुयात ब्रुयात प्रियम ब्रुयात, सच्ची तो पर प्रिय कार्य होना चाहिए, ना ब्रुयात अप्रियम सत्यम। अप्रिय मतलब कड़वी कड़वी सच नहीं बोलना चाहिए कि किसी को पीड़ा हो। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि अहंकार से क्या बोलते हैं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, सच तो बोला भाई, तू पर इससे दूसरे को पीड़ा हो रही, छाती छिल्ला, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। तो कायिक वाचिक मानसिक ये जो है ना हिंसा से दुख की प्राप्ति होती और अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। तो जीवन में अपना ऐसा स्वभाव बनाए कि हमारे स्वभाव से आचरण से व्यवहार से किसी को तकलीफ न हो। नियम है यदि आप किसी को पीड़ा पहुंचाएंगे, दुख दे तो दुख होता है, सुख दे तो सुख हो या, यदि आप किसी को पीड़ा पहुंचाएंगे तो उसके अंदर जो अंतरात्मा है उससे आपको पीड़ा मिलेगी। और आप बैठे बैठे किसी की मंगल की कामना करेंगे तो उससे आपका मंगल होगा। जिस प्रकार दधीची के पुत्र पिप्पलाद ने भगवान शंकर की तपस्या करी, भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो क्या वरदान मांगे कि बस एक दिन के लिए जिस शक्ति से आप महाप्रलय करते हैं वह शक्ति प्रदान कर दो, फिर वापस ले लेना। भगवान शंकर ने कहा कि उस शक्ति का भाई तू क्या करेगा, बोले कि हमारे पिता दधीची को स्वार्थी देवताओं ने जो है ना मार डाला, बोला कि आपके हड्डियों से बनाएंगे वज्र, आप अपनी अस्थि प्रदान करो। तो मैं अपने पिता के ऋण से उऋण होने के लिए एक दिन के लिए शक्ति मांगता हूं ताकि सारे देवताओं को मैं जो है ना दिखा सकूं, उनको भी मैं श्लोक पहुंचा सकूं। भगवान शंकर ने कहा बेटा ये अच्छी वरदान नहीं, मंगलकारी वरदान मांग, उसे विश्व का मंगल हो, इससे तो देवता बड़े दुखी होंगे, पीड़ित होंगे, परेशान होंगे। पिप्पलाद ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, जब हमारे पिता षष्ठी यातना किया तो पिता को कितनी तकलीफ हुई होगी। देवताओं ने सोचा भगवान का अच्छी बात, जब दुराग्रह है तो ऐसा है, पहले मैं तुमको थोड़ा सा देता हूं, सहन करो तो पूरी ताकत दूंगा। भगवान का बैठ जाओ ध्यान में, जैसे भगवान ने प्रलयंकारी शक्ति थोड़ा सा दिया, अब जो है ना पिप्पलाद की आंख जलने लगी, कान फटने लगा, हृदय बेचैन हो गया, पैर टूटने लगे, हाथ भी टूटने फटने लगे, चिल्लाए कि आप शक्ति दे रहे कि मुझे मार रहे। भगवान शंकर ने कहा कि बेटा जब तुम देवताओं का नाश करोगे तो देवताओं का अंश तुम्हारे आंख में है,
आदित्य का, दिग देवता का, कान में मन में चंद्रमा का, बुद्धि में बृहस्पति का, पैर में वामन कांस है। जब देवताओं का नाश करोगे तो यहां आए उसका भी तो नाश होगा ही। तब कहा बस महाराज हो गया, हमको नहीं चाहिए प्रलयंकारी शक्ति। हम भी पिपलाद जैसे बचपना में बचकानी किए, वैसे हम भी भगवान से वो बचकानी वाली शक्ति मांगते हैं। क्या मांगते हैं? हे भगवान, हमारा तो ठीक हो, दूसरे का, शत्रु का, विरोधी का सत्यानाश हो। भाई उसके अंदर भी वही चैतन्य, वही आत्मा जो हमारे हृदय में है, यदि उसका बुरा चाहेंगे तो आपका ही बुरा होगा। इसलिए कहा कि तनमे मन शिव संकल्प मस्तु, सबके मंगल की, कल्याण की कामना करनी चाहिए। सबके कल्याण में आपका कल्याण है, क्योंकि जो विराट परमात्मा का स्वरूप है, जब सबका कल्याण होगा तो जरूर आपका भी कल्याण होगा। पर अज्ञानी जीव स्वार्थ के कारण अपना तो कल्याण चाहता और दूसरे का अकल्याण, तो कहा भाई ऐसा नहीं करना। इसलिए अहिंसा, जब सार्वभौम अहिंसा व्रत होगा तब आपके जीवन में उसी आत्म ज्योति अखंड आनंद की अनुभूति होगी। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम शांति शांति।